Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
अपने तक का मतलब सत्य कहीं बाहर नहीं है, ये पहले ही बात कर चुके। जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बीच में जो अपरिवर्तनीय तत्व है वही सत्य, वही हमारा साध्य है, उस तक ही पहुंचना है। तो इसलिए इसमें रास्ते में, क्योंकि अगर अपने तक ही आपने चल के अपने को ही पहचानना है, अपने तक ही पहुंचना है, तो वो भौतिक दृष्टि से जिसको चलना कहते हैं उसे बंद करना पड़ेगा। इसमें किलोमीटर नहीं गिने जाएंगे कि कितने हैं और कितने नहीं हैं। तो जहां अपने से ही आपने मिलना है, क्योंकि सत्य कहीं आपसे अलग सत्य हो नहीं सकता, ये निशानी होती है सत्य की कि सत्य हमेशा चेतन भी होता है, सत्य कभी जड़ नहीं होता। आप चेतन हैं, सत्य भी है, सत्य चित आनंद ब्रह्म की एक परिभाषा भी है, एक व्याख्या है ब्रह्म की सच्चिदानंद, कि वो सत्य भी है, चित भी है, आनंद। असल में शब्द तो एक ही है और वो है सत्य। ये उसी शब्द की, उसमें कोई गुण नहीं, उसमें कोई कुछ नहीं, ये सत्य की ही अपनी इनहेरेंट क्वालिटीज है। ये सत्य में छुपे हुए स्वयं के गुण है, जिसको अनुभव करके ऋषियों ने उसकी व्याख्या के लिए इन शब्दों को बनाया कि इसका हम अनुचिंतन करते रहे, ये करें ताकि उस तक हम पहुंच जाएं। वस्तुतः सत्य तक पहुंचने के बाद कोई बोल नहीं पाया और बोलने की जरूरत भी नहीं, और अगर कोई बोल रहा है मेरे जैसा तो समझ लो अभी सत्य से बहुत दूर। अभी सत्य की बातें सुन रखी है, पढ़ रखी है, रट रखी है, कई बार दोहराई है, अभी सत्य की बातें करने में मजा आ रहा है। तो जब सत्य तक कोई पहुंच गया तो फिर सत्य तक पहुंचे हुए की बात तो वो समझ लो कि उसकी भाषा सत्य की ही भाषा है, फिर वो नहीं बोलता, फिर उसके अंदर से सत्य ही बोलता है। इन ऋषियों के माध्यम से सत्य ने अपने आप को अभिव्यक्त किया, इसलिए उपनिषदों के किसी ऋषि का नाम नहीं है कि किस ऋषि ने कौन सा उपनिषद बनाया। ये हम अपने आप ही के ये मंडूक क्या है, तो इसके नाम से मंडूक को लेकर ऋषि होंगे, ऐसा ऐसा ऐसी कल्पनाएं हैं हमारी, लेकिन वास्तविकता ये है कि सत्य ने जिसको भी माध्यम बना लिया वही मुखरित हो उठा, उसी ने ही, ये सत्य ही अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। बात केवल ये थी कि थोड़ा जो भी इन दिनों में सुनकर अगर कहीं थोड़ी बहुत भी मन में ये प्रेरणा आ जाए कि इनको जीवन में अपना ही ले, जो कि मुश्किल है, क्योंकि बहुत सुना आज तक, इतना सुना कुछ नहीं अपनाया, तो अब हम अपनाने लग जाएं, मैं भी ये आशा करूं और आप भी ऐसा सोचें, तो वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्योंकि मुश्किल भी घटनाएं घट जाती, तो शायद कभी किसी के मन में कोई बात आ जाए, तो उसमें केवल ये कहना है कि ओम साधन नहीं है जो हमें सत्य तक साध्य तक पहुंचाए। ओम स्वयं में ही अपने आप में, क्योंकि ये ब्रह्म ही है, इस श्लोक में ये कहा कि ये ब्रह्म ही है, लेकिन इसको समझने के लिए, क्योंकि बुद्धि अखंडता को समझ नहीं सकते, अखंडता का मतलब होता है जब सब चीजें एक हो जाएं। देखो जब सब चीजें एक हो जाए तो नींद आ जाएगी, नींद में कोई चीजें अलग अलग नहीं होती, जब तक चीजें अलग अलग दिखलाई देंगी नींद नहीं आ सकती, समाधि में चीजें अलग अलग दिखलाई नहीं देंगी, क्योंकि समाधि में अखंडता, सब चीजें एक हो गई, तो उसमें चीजें अलग दिखलाई नहीं देगी। जहां चीजें अलग दिखलाई नहीं देगी वहां बुद्धि तिरोहित हो जाएगी, वहां बुद्धि की पहुंच नहीं, वहां अद्भुत रस का उदय होता है। रसों में एक अद्भुत रस जो आपको अचंभे में डाल दे, जो हो भी नजर भी आए और आप अभिव्यक्त भी ना कर सके कि क्या, उस अद्भुत रस का अगर आपने कभी थोड़ी सी भी झलक देखनी हो तो श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन की स्थिति को देखें, जब उसके बार बार कहने पर भगवान अपना विराट रूप दिखलाते। पहले तो वो कहता है कि दिखलाओ, मुझे जरूर दिखलाओ, और जो ही उन्होंने दिखलाया उसी समय वो चारों ओर कांपने लगा, हाथ जोड़ने लगा, स्वयं प्रार्थना के और सिर झुका के, और कोई दूसरी बात ही नहीं, पूरे का पूरा अध्याय बस नमस्कार में गुजर गया कि तेरे इधर भी नमस्कार, उधर भी नमस्कार, यहां भी नमस्कार, वो भी नमस्कार, हाथ जोड़ के कहते हैं कि जल्दी से आप इस रूप को बंद कर दो मेरे। उन्हें तो वो अद्भुत रस की एक झलक, वैसी स्थिति पर पहुंचकर भी होश कायम रह जाए और फिर आदमी कोई बात कर सके तो उसे ऋषि कहते। उन ऋषियों के ये उपनिषद है कि जो अद्भुत रस में से भी उसकी विचित्रकर्ता को देखते हुए भी अपनी बात को कहने का उनमें जो साहस हुआ वो उसी की कृपा से। इसलिए उन्होंने कह दिया कि हम तो कुछ नहीं बोले, उस सत्य ने ही अपने आप को अभिव्यक्त किया है। तो ये उस सत्य के डिफरेंट शब्दों, एक बात ये भी ध्यान में रख लेना कि शब्द जितने भी हैं ये कपड़े मात्र हैं, जैसे वस्त्र हैं, शब्द पदार्थों के भावों के वस्त्र हैं। हर शब्द ढकता है किसी भाव, उसके नीचे कोई भाव, भाव को नहीं भी समझे तो पदार्थ, पदार्थ क्या है। तो शब्द जितने भी बोलते चले जाएंगे उतने कपड़े और डालते जाएंगे हम चीजों पर। हर शब्द किसी न किसी अर्थ की ओर इशारा करता है, किसी वस्तु की ओर इशारा करता है, और हर वस्तु का मतलब होता है जो स्थूल हो, जिसमें वजन हो, जिसमें वेट हो, जिसमें आकार हो, उसको वस्तु बोलते हैं, शक्ल सूरत हो और वजन भी। तो हर शब्द एक पदार्थ की ओर इशारा करता और हर पदार्थ एक भाव का प्रतिनिधित्व करता है। हर पदार्थ के पीछे एक भाव छुपा हुआ है, अगर वो भाव नहीं है तो पदार्थ की कोई कीमत नहीं। देखो मां एक शब्द है, मां एक औरत को भी कहते और भारत माता को भी, उसकी भी फोटो बना के लोगों ने मां कहा, और बहुत सारे ऐसे हुए जिन्होंने भारत माता के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। तो वो जो जान तक कुर्बान करते हैं वो मां शब्द को प्रतीक के भाव से उत्प्रेरित, उनके अंदर मां शब्द ने वो भाव पैदा किए हैं जो मां के प्रति होना चाहिए। वो एक विशेष प्रकार की वृत्ति है जो आदमी को मजबूर कर देती है अपने आप को निछावर करने के लिए उस पर। अगर वो वृत्ति नहीं है तो फिर मां नाम की कोई चीज नहीं है, ये शब्द ही है केवल, पिता नाम की कोई अर्थ नहीं है, पुत्र नाम का कोई अर्थ नहीं है, ये शब्द है। मां बेटा पुत्र भाई बहन गुरु शिष्य, हर शब्द के पीछे एक शरीर है, हर शरीर एक भाव का प्रतीक है। अगर वो भाव जागृत नहीं है तो सब व्यर्थ है, अगर भाव जागृत है तो सारा कुछ सार्थक, फिर किसी बात की कमी ही नहीं। तो ये भाव जागृत करने के लिए प्रवचन होते हैं, भाव जागृत करने के लिए शब्दों के अर्थों को लेकर कि ये इसका शब्दार्थ है, ये इसका वाच्यार्थ है, ये इसका लक्ष्यार्थ है और ये इसका भावार्थ। तो इस तरह से शब्दों के भाव अर्थ को जानने के लिए ही ये सारे प्रवचन। अंत में बात भाव पर ही खत्म होगी, सत्य भी एक भाव ही है, इसलिए भगवान को भी भावमय ही कहते और भगवान भाव के भूखे हैं। ये भी कई बार बातें सुन ली हम, क्यों भाव के भूखे हैं? क्योंकि वो स्वयं अपने आप में भावमय है, तो जो भाव है वो भाव की ओर ही जाएगा, किसी और तरफ जा नहीं सकता, उसे शब्द रिझा नहीं सकते। बड़े बड़े विद्वान शब्दों वाले एक तरफ रह गए और शबरी जैसे बाजी मार गए, क्योंकि वो भाव तक की बात चली गई, शब्दों की बात नहीं रही वहां। उससे बड़े बड़े विद्वान, आज भी बड़े बड़े विद्वान हैं जो शब्दों का कुछ भी करेंगे लेकिन उस तक पहुंचे नहीं, लेकिन जो भाव में डूब गए उन्होंने कब का उसको पा लिया और कब की उस मंजिल तक पहुंच गए जिसकी चाहना हम लोग करते। तो इस छोटी सी बात में जो ऊपर कही है केवल इतना ही इसका अर्थ है कि वही सत्य है, उसको ही ब्रह्म कहते हैं। सत्य क्या है? जो आपके स्वप्न जागृत सुषुप्ति में एक जैसा रहे, जो जब आप जाग भी रहे हैं, सो रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो आपके अंदर ज्यों का त्यों है, वो हिलता नहीं अपनी जगह से, अर्थात आत्मा। और उसको इसमें आगे चल के तुरीय भी कह देंगे कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय। तुरीय कोई अवस्था नहीं, असल में वैयक्तिक चेतन को तुरीय कहते। वैयक्तिक चेतन का मतलब होता है कि एक चेतन है व्यापक, जो सब जगह पर है, और उस चेतन में जितना सा मेरे अंतःकरण के घेरे में आ गया वो परिच्छिन्न चेतन। बिजली तो सर्वव्यापक है, लेकिन मेरे मीटर की जितनी कैपेसिटी है वो एक वाट का है कि दो वाट का है, ये बात एक दूसरी है, वो उससे ज्यादा नहीं ले सकेगा। तो जो मेरे अंतःकरण में कैद है चेतन, ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए, उसको हम वैयक्तिक चेतन कहते हैं, अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन कहते हैं। और ये चेतन परम चेतन का अंग है, उसी का ही हिस्सा है, अंतःकरण ने इसको उससे अलग कर रखा है। अंतःकरण की बात को समझकर विलय हो इसका, इसको विलोपन कहेंगे, तो वो परम चेतन ही है जो मेरे में है, वही परम चेतन। जो ही अंतःकरण खत्म होता है तो फिर वो परम चेतन ही मेरे माध्यम से बोलेगा, फिर अंतःकरण की कोई बात उसमें रहेगी। तो इस तरह से वो इसमें ये बतला रहे हैं कि वही सत्य है, उसको ही ब्रह्म कहते हैं। समझने के लिए उसको हम ओंकार कहेंगे इस उपनिषद में, क्योंकि उसको लेकर उसकी मात्राओं को आ उ और म, ये तीन मात्राओं से ओम बनता है और अनुस्वार एक बिंदी उस पर लगा दे। तो इस तरह से क्योंकि हमें उसको समझना है और वो अपने आप को समझाने के लिए ही ओम के रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि उसको स्वाय उसके अतिरिक्त और कोई ना समझा सकता है, और समझेगा भी वो व्यक्ति जो सात्विक अंतःकरण से उसकी ओर आगे बढ़ता है। ये इसने छोटा सी इस श्लोक में जो ऊपर कहा उसकी बात आपसे कही। अब इस उपनिषद का शांति पाठ है, ये रोज आप करते ही है, उपनिषद की परंपरा है कि उपनिषद से पहले पाठ प्रारंभ करने से पहले गुरु और शिष्य, प्रवक्ता और श्रोता सभी मिलकर शांति पाठ करते थे, ये इसकी प्रथा हुआ करते, और उपनिषद के अंत में भी शांति पाठ करते हैं और बीच में भी करते। इस उपनिषद में ओम भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरंगैर्स्तुष्टवान् सस्तनूभिर्व्यशेम, देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। इसका दूसरा भाग फिर है स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध शर्वाः, स्वस्ति न पूखा विश्व येदाः, स्वस्ति न स्तारक्षणो अरिष्ट नेमी, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ ध्यान के श्लोक प्रार्थना स्तुति और स्तोत्र इन सब में अंतर होता है। ध्यान के श्लोकों में तो अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, ये पौराणिक प्रथा है। पुराणों में जैसे सीता समारोपतम वाम भागम ऐसे आप पढ़ते हो कि उसमें ध्यान के श्लोक में तो भगवान के रूप का वर्णन होता है कि हाथ में बांसुरी है, सिर पे मोर मुकुट है, सामने गौए हैं, इस तरह की एक तस्वीर बनती। तो ध्यान के श्लोकों में इंद्रियों की प्रधानता है। आंखों से आप देख रहे हो सिर पे मोर मुकुट है, बांसुरी है, ये है वो है, इस तरह से ये ध्यान के श्लोक कहलाते। प्रार्थना में दैन्य भाव से अपने अभाव की पूर्ति के लिए कि मेरे में ये है, सुख संपत्ति घरे आवे, ये प्रार्थना है। कष्ट मिटे तन का, कि हम इससे दुखी हैं कष्टों से और इससे धन का अभाव है, ये आए, तो इस तरह के को प्रार्थनाएं कहते हैं। स्तुति कहते हैं स्वयं अपने आप जो आपके मन में आए भगवान की प्रशंसा करना। स्तोत्र कहते हैं किसी द्वारा लिखी गई स्तुति को पढ़ना, जैसे महमन स्तोत्र, वो किसी का लिखा हुआ है, हम भी दोहरा देते हैं पुष्पदंत की बात को, भले ही वो हमारे अपनी भावनाएं नहीं। स्तुति वो होती है जो आपके अपने मन में आए भगवान की प्रशंसा करो, इसलिए स्तुतियां भी बहुत सी हैं, प्रार्थनाएं भी बहुत। उपनिषद में शांति पाठ ये शब्द है, ये प्रार्थना नहीं है। आम तौर पर इन्वोकेशन या इसको प्रेयर कई कह लेते हैं कि ये भी प्रार्थना है, ये प्रार्थना नहीं है, ये एक किस्म की संकल्पात्मिक प्रतिज्ञा है। संकल्प करते हुए पूरी तरह से मन के अंदर निश्चय करके कि ये मैं करूंगा, तो वो करते हुए अज्ञात शक्तियों से प्रण जैसा है। को यहां ओम भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवा, इसका अर्थ लिखा है कि हे देवगण, हम कानों से कल्याणमय वचन सुने, ये इसका अर्थ लिखा हुआ है कि हे देवगण, हम कानों से कल्याणमय वचन सुने। ये जहां सुने पे इन्होंने बंद कर दिया, इसके आगे गे शब्द गे, हे देवगण हम कानों से कल्याणमय शब्द सुनेंगे, ये गे अपने आप जोड़ना पड़ेगा आपको, तब ये उपनिषद बनेगा, नहीं तो ये उपनिषद की प्रार्थना नहीं। इसका अर्थ तो ये है कि आप देवताओं से कहते रहो कि हम ठीक सुनेंगे, अपने आप कुछ नहीं करना, और वो हुआ नहीं आज तक और होगा भी नहीं, जब तक इस वहम में रहोगे कि कोई देवता आके हमें शुभ सुना जाएंगे, कोई देवता आके हमें ठीक कर जाएंगे, तब तक अपने आप को तो धोखे में रखेंगे ही और इस तरह की बातें भी धोखे में रखेंगे। ये ऐसी बात नहीं है, हे देवगण, ये बहुवचन भी है, यानी बहुत सारे देवता जिनका ना आपको पता ना वास्ता, प्रार्थना तब होती है सामने मोर मुकुटा बंसी वाला नजर तो आ रहा है कुछ जिसको कुछ कह रहे, इसमें ऐसे हाथ जोड़ के हे देवगण किसको संबोधन है, किसके लिए ये बात कर रहे, कौन सी वृत्ति बनती है मन में जो हमें प्रेरणा देगी आगे बढ़ने के लिए, इसमें तो कुछ भी नहीं, इसमें तो एक रटी रिटाई बात है रोज करते रहो ठीक भद्रम करने भी श्री राम देव। और अगर इसके आगे आप गे लगा दोगे कि हम कानों से कल्याणमय वचन सुनेंगे, तो कम से कम अगर नहीं सुनोगे कल्याणमय तो अपने आप को एक बार झूठा तो कहोगे मन में कि मैंने ये प्रतिज्ञा की थी, मैंने ये वचन किया था और सारा दिन सुनता हूं मैं लोगों की चुगली निंदा बुराई, बात ये सोची थी। और देवगणों का मतलब है चलो कुछ भी इसमें लगा लो, जितने भी देवता है अगर कोई हमारे तो कोई चीज ऐसी है ही नहीं, तो यहां तो वायु देवता पृथ्वी देवता अग्नि देवता जल देवता चंद्र देवता सूर्य देवता कौन है जो यहां देवता नहीं, अर्थात जो भी चीजें हैं संसार में जितनी भी नजर आ रही है उन सब के सामने ये आपकी प्रतिज्ञा है कि हम कानों से कल्याणमय शब्द सुनेंगे। क्योंकि जहां आप नहीं सुन रहे होंगे कल्याणमय शब्द, जहां आप कोई किसी का झूठ किसी की निंदा, देखो सुनने का मतलब होता है कि करेंगे भी वही सुनाएंगे भी वही, क्योंकि सुनेंगे तो तब जब कोई सुनाएगा, अगर कोई सुनाएगा ही नहीं कल्याणमय शब्द तो सुनेगा कौन। तो यहां जब हम कहते हैं कि हे देवगण हम अपने कानों से भद्रम यानी कल्याणमय वचन सुनेंगे, तो इसके साथ ही दूसरी बात आ जाती है कि हम आज से कल्याणमय शब्द ही सुनाएंगे, सुनेंगे भी कल्याणमय और सुनाएंगे भी कल्याणमय। नहीं तो अगर सुनाएंगे नहीं तो सुनने वाला सुनेगा कहां से। तो ऐसा नहीं है कि हम सुनेंगे तो कल्याणमय और सुनाएंगे अकल्याणमय, सुनाएंगे दूसरे की निंदा चोरी के वो ऐसा है वो ऐसा है वो यूं है वो है, ऐसा नहीं है। हे देवगण का मतलब ये है कि हवा से भी ये बात कर रहे हैं, पृथ्वी से भी जल से भी कहीं, ताकि जहां कहीं भी आप कोई बुरी बात सुन रहे हो आपको ध्यान में आ जाए कि पृथ्वी देख सुन रही है जल सुन रहा है हवा सुन रही, इनसे बचकर तो हम कहीं जाएंगे नहीं, इनसे बचकर कहीं हम कुछ कर ले तो समझ लो फिर भी कल्याण, लेकिन इनके सामने हम ये कह बैठे हैं कि हम आज से कल्याणमय सुनेंगे। भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, हम आज से कल्याणमय सुनेंगे। देखो भद्र शब्द जो है संस्कृत में हमारे, इसमें अब कल्याणमय का क्या अर्थ हुआ, कल्याणमय का अर्थ एक व्यापारी के लिए तो ये हो सकता है कि जिसमें 8-10 लाख का लाभ हो जाए आज ही शाम तक वो उसके लिए कल्याणमय है, वो तो बड़े ध्यान से सुनेगा और वेद का वाक्य भी पूरा हो गया कि बड़ा कल्याणमय सुनो मैंने, उसने ऐसी सलाह दी कि शाम को 10 लाख बिना बात के आ गया। तो फिर कल्याणमय का भी तो कुछ अर्थ होता होगा ना। भद्र शब्द में दो चीजें छुपी हुई होती, इसमें दो भाव छुपे हुए, पवित्रता और प्रसन्नता। जहां दो चीजें हों उसको भद्र बोलते, भद्रम पश्येव अक्षिविर, आंखों से भद्र ही देखेंगे कानों से भद्र ही सुनेंगे। भद्र का अर्थ होता है जिसको सुनने से मन पवित्र भी हो और मन प्रसन्न भी हो, दोनों बात, खाली प्रसन्न हो जाए मन वो बात नहीं है और खाली पवित्र हो जाए प्रसन्नता नहीं है तब भी नहीं, वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। उपनिषद की प्रतिज्ञा के लिए दोनों ही बातों को ध्यान में रखना होगा, प्रसन्नता और पवित्रता। अब फर्क क्या है इसमें दोनों में, प्रसन्नता और पवित्रता में? देखो, पवित्रता समाज के लिए हितकारी और प्रसन्नता आपके अपने लिए हितकारी। जितना मन प्रसन्न होगा उतना समाज को लाभ है, जितना पवित्र होगा। लेकिन मन बड़ा पवित्र है और खिन्नता है अंदर, आप दुखी हैं अपने आप में, तो उससे भी हम सत्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत लोग हैं ऐसे जो मन के बड़े पवित्र हैं लेकिन दुखी। कैसे दुखी हैं? वो हर समय यही करते रहते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, आजकल ये हो रहा है, आजकल वैसा हो रहा है, अब तो देखा नहीं जाता, अब तो यूं हो रहा। वो सारा दिन इसी। ये ठीक है कि वो अपने आप में अच्छे होंगे, पवित्र होंगे, किसी का उन्होंने अहित नहीं किया, लेकिन ये जो वो बातें कर रहे हैं सारा दिन, ये वो स्वयं भी डिप्रेशन में जा रहे हैं और जिस जगह बैठेंगे घर वालों को भी डिप्रेशन में ले जाए। तो मन पवित्र भी हो लेकिन प्रसन्न भी हो। केवल प्रसन्न हो, पवित्र ना हो, तो वो तो फिर बड़े प्रोफेशनल आतंकवादी कि अपने मिशन में पूरे हो गए। अगर 10-20 हजार को मार दिया एक ही झटके में, तो मन तो प्रसन्न है ही उनका कि जो योजना बना के आए थे वैसा ही उन्होंने आके ताज होटल को खत्म कर दिया। तो जो भी इसके पीछे होंगे, प्रसन्नता तो निश्चित रूप से है क्योंकि मिशन में कामयाब हो, तो वो प्रसन्न तो हुए होंगे लेकिन मन की पवित्रता नहीं, इसलिए समाज का आहित है। तो भद्र में दोनों ही छवियां, मन प्रसन्न भी हो और पवित्र भी। पवित्र में दूसरे का हित है, जो भी हमारे साथ है। समाज का मतलब ये नहीं है कि पूरे भारतवर्ष का या उसका। पवित्रता का मतलब होता है घर वाले भी हमेशा खुश रहें। अगर हमारा मन प्रसन्न ही है, कि मैं प्रसन्न का मतलब होता है कि अपने मन की करना, मेरे मन की हो गई तो प्रसन्न है, मेरे मन की नहीं हुई तो अप्रसन्न। अगर मैं अपने काम में कामयाब हो गया, कुछ कमाने में, उसमें इधर उधर, घर वाले कितना भी मतलब दुखी हो कि ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन वो खुश है, कहते मैं इन्हीं के लिए कर रहा हूं। घर वाले कहते हैं हमारे लिए ये 2 कौड़ी का नहीं। तो क्योंकि मन उसका प्रसन्नता की ओर तो जा रहा है, पवित्रता की ओर नहीं जा रहा। पवित्रता में दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा, प्रसन्नता में सिर्फ अपना ही ध्यान होता है। तो भद्र शब्द जो है इसकी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसका खाली कि हे देवताओं मेरा कल्याण कर जाओ कह के मैं काम खत्म हो गया अपने, ठीक है, बाकी अब देवता जाने और वो जाने, हमें तो कुछ करना नहीं। हम तो क्या आए, जैसे एप्लीकेशन दे आए हैं, आगे कार्रवाई होती रहे। तो ये उपनिषद वो नहीं। उपनिषदों की जो प्रतिज्ञा है वो ये नहीं है कि आप किसी के आगे प्रार्थना करके उधर चले जाओ, क्योंकि इसमें तो पहले ही कह चुके कि सत्य वो है जो आपके अपने पास है। सत्य वो है जिसके आधार पर आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं का अनुभव करते, वही सत्य है। सत्य से बढ़कर कोई नहीं, हर बात सत्य से ही करनी है। सत्य ही प्रेरणा देता है, सत्य से ही प्रार्थना करनी है। तो इसका अर्थ ये है कि ये सब कुछ अपने पर ही लागू हो रहा है, देवता भी कहीं बाहर नहीं है, इंद्रियों से ही ये प्राण है, आपका अपना ही ये प्राण। क्योंकि उपनिषदों में देवता इंद्रियों के, हर इंद्रिय का एक एक देवता है, चाहे वो आंख का सूर्य है, कान का दिक देवता है, त्वचा का, ऐसे सब बने हुए हैं और कई बार आपने पढ़े। इसका अर्थ केवल यही है कि अपने आप में आप एक संकल्प कर रहे हो कि आज से मेरे कान वो सुनेंगे जिससे मन पवित्र भी हो और प्रसन्न भी, आज से मेरी आंखें वो देखेंगी जिससे मेरा मन पवित्र भी हो और प्रसन्न भी हो, आज से मैं उस तरह के यज्ञ, उस तरह की आराधना, उस तरह का धार्मिक कृत्य करने की कोशिश करूंगा जिससे मेरा मन प्रसन्न और पवित्र भी हो। ओम तत्सत्।